नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग पहली से 30 नवंबर तक चौथा राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान चलाएगा। चालू वित्त वर्ष में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में 6.33% की वृद्धि हुई है। दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त ने कल हैडो क्षेत्र का निरीक्षण कर सार्वजनिक सुविधाओं की समीक्षा की और तकनीकी कारणों के चलते जहाज MV कैम्बलबे की कल की श्रीविजयपुरम से मायाबंदर होते हुए कोलकाता की निर्धारित यात्रा को रद्द कर दिया गया है। सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग पहले से 30 नवंबर तक चौथा राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC अभियान चलाएगा। ये अभियान पूरे देश के 2000 जिलों और उपमंडल मुख्यालयों में आयोजित होगा। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने कहा कि DLC अभियान के चौथे चरण का उद्देश्य 2 करोड़ डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जारी करना है। इसमें चेहरा पहचान तकनीक पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये अभियान पेंशन वितरण बैंक और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से चलाया जाएगा। चालू वित्त वर्ष में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में 6.33% की वृद्धि हुई है और ये बढ़कर 11.89 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। आयकर विभाग ने बताया कि इस वर्ष 1 अप्रैल से 12 अक्टूबर तक शुद्ध कॉरपोरेट कर संग्रह लगभग 5.02 लाख करोड़ रुपए रहा। गैर कॉरपोरेट में लगभग 6.56 लाख करोड़ रुपए का कर संग्रह हुआ। आयकर विभाग के अनुसार प्रतिभूति लेन देन कर संग्रह 30,878 करोड़ रुपए रहा। रिफंड समायोजित करने से पहले सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 13.92 लाख करोड़ रुपए रहा। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 2.36% की वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि रिफंड जारी करने में 16% की कमी आई है और ये 2.03 लाख करोड़ रुपए हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित और पिछले महीने की 22 तारीख से शुरू हुआ वस्तु और सेवा कर GST बचत उत्सव से पूरे देश को लाभ हो रहा है। GST सुधार के प्रभावों की कड़ी में आज प्रस्तुत है संशोधित दरों से महाराष्ट्र के उद्योगों को मिलने वाली मजबूती के बारे में एक रिपोर्ट।
नए GST सुधारों से महाराष्ट्र के किसानों, कारीगरों और उद्योगों को बड़ी राहत मिली है। राज्य के प्रसंस्कृत चीनी पर अब 12% के बजाय 5% GST लग रहा है, जिससे 50 लाख से अधिक गन्ना किसानों को सीधा लाभ हुआ है। साथ ही GST में इस बदलाव से प्रसंस्कृत और संरक्षित मछली पर कर की दर 12% से घटकर 5% होने से कोंकण के 2 लाख से अधिक मछुआरों और तट श्रमिकों को मदद मिली है तथा प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर कर में कमी से किसानों को लाभ हुआ है और बागवानी को भी बढ़ावा मिला है। इसके अलावा नए GST सुधारों के अनुसार 2,500 रुपए प्रति जोड़ी तक की कोल्हापुरी चप्पलों पर अब 5% GST लग रहा है, जिससे यह घरेलू और वैश्विक बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धी हो गई है। वहीं वर्ली पेंटिंग और पैटर्निंग साड़ियों पर अब 5% कर लग रहा है, जिससे पारंपरिक कलाओं का संरक्षण होगा और कारीगरों की आजीविका सुरक्षित होगी। इन सुधारों से राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा तथा लोगों को रोजगार मिलेगा।
श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कल विश्वास योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम के अंतर्गत दंडात्मक क्षतिपूर्ति को तर्कसंगत बनाकर मुकदमेबाजी को कम करना है। डॉक्टर मांडविया ने कल नई दिल्ली में कर्मचारी भविष्य निधि के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 238वीं बैठक में इस योजना का शुभारंभ किया। डॉक्टर मांडविया ने इस अवसर पर कई डिजिटल पहलों का भी शुभारंभ किया। इसमें पुनर्गठित रिटर्न फाइलिंग मॉड्यूल, उपयोगकर्ता प्रबंधन मॉड्यूल और कुशल वार्षिक प्रीमियम प्रबंधन के लिए उन्नत ई ऑफिस तथा स्पैरो प्रणाली शामिल है। बैठक में बोर्ड ने आंशिक निकासी के लिए सरल और उदार मानदंडों को स्वीकृति दी। इसका उद्देश्य सदस्यों की सुविधा और सेवानिवृत्ति सुरक्षा को बढ़ाना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है, दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त का दौरा और जहाज यात्रा रद्द। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 MHz पर भी सुन रहे हैं। ये समाचार मोबाइल फोन और वाहनों के FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त ने कल हेडो में वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 का व्यापक निरीक्षण किया। इस दौरे का उद्देश्य सार्वजनिक सुविधाओं की समीक्षा, बुनियादी ढांचे की पहचान और सामुदायिक प्राथमिकताओं के लिए स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करना था। दौरे के दौरान तिरुपति मंदिर क्षेत्र के सामने खाली पड़ी जमीन का उपयोग सामुदायिक और मंदिर संबंधी गतिविधियों के लिए करने और पास के खाली पड़े सरकारी क्वार्टरों को स्थानीय युवाओं के लिए व्यायामशाला में बदलने के प्रस्ताव की दक्षिण अंडमान के उपायुक्त ने समीक्षा की। उन्होंने CCS के पास सामुदायिक हॉल के निर्माण, रांची विजन के पास पार्किंग क्षेत्र और खेल के मैदान के निर्माण के प्रस्तावों पर भी चर्चा की। इस दौरान जिला उपायुक्त के साथ वार्ड पार्षद भी उपस्थित थे। पर्यटन निदेशालय की ओर से कल समुद्री जीव विज्ञानी और प्रकृतिवादी दीक्षा दीक्षित द्वारा द्वीपीय पर्यटन का तरीका विषय पर एक सार्वजनिक व्याख्यान का आयोजन किया गया। उन्होंने द्वीप समूह के द्वीपीय पारिस्थितिकी तंत्र और समृद्ध समुद्री जैव विविधता के अनुकूल सतत पर्यटन प्रथाओं के महत्व पर जानकारी दी। इस अवसर पर पर्यटन निदेशक ने सभी पर्यटन हितधारकों द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने को कहा। निदेशक ने हितधारकों के किसी भी विशिष्ट कौशल या प्रशिक्षण आवश्यकताओं के लिए अपनी आवश्यकताएं विभाग को प्रस्तुत करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में पर्यटन उद्योग के साझेदार, टूर संचालक, एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स संचालक, स्नॉर्कलिंग गाइड, स्कूबा डाइविंग प्रशिक्षक और छात्रों ने भाग लिया। तकनीकी कारणों के चलते जहाज MV कैंबल बे की कल की श्रीविजयपुरम से माया बंदर होते हुए कोलकाता जाने वाले यात्रा कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। हालांकि जहाज MV स्वराज द्वीप 30 अक्टूबर को सुबह 10 बजे श्रीविजयपुरम से कोलकाता के लिए रवाना होगा और 6 नवंबर को दोपहर 12 बजे कोलकाता से श्रीविजयपुरम के लिए वापसी करेगा। यात्री स्टार्स टिकटिंग काउंटर या ई टिकटिंग पोर्टल के माध्यम से सभी दिनों में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के बीच अपने टिकट बुक करा सकते हैं। टिकट कल सुबह 9 बजे से जारी किए जाएंगे। शिक्षा निदेशालय के विज्ञान शाखा ने बिरला औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकी संग्रहालय कोलकाता के सहयोग से कल एक राज्य स्तरीय विज्ञान नाटक प्रतियोगिता का आयोजन किया। कार्यक्रम में सभी 9 शैक्षिक अंचल क्षेत्रों से आए क्षेत्रीय स्तर के विजेता प्रतिभागियों ने मानव जाति के लाभ के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय पर विज्ञान नाटक प्रस्तुत किया। इसमें दक्षिण अंडमान शैक्षिक अंचल क्षेत्र से गर्ल्स स्कूल की छात्राओं ने प्रथम स्थान हासिल किया, जो 11 नवम्बर को कोलकाता में आयोजित होने वाले पूर्वी भारत विज्ञान नाटक प्रतियोगिता में द्वीप समूह का प्रतिनिधित्व करेंगे। राष्ट्रीय स्मारक सेलुलर जेल में फ्रीलांस टूरिस्ट गाइड का पैनल तैयार किया जा रहा है। इसके लिए चुने गए सभी उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा और व्यक्तिगत साक्षात्कार 17 अक्टूबर को सेलुलर जेल परिसर में आयोजित किया जाएगा। उम्मीदवारों से अपने वैध फोटो पहचान पत्र और मूल दस्तावेजों के साथ सुबह 8:30 बजे तक रिपोर्ट करने को कहा गया है। मूल्यांकन अंडमान निकोबार द्वीप समूह के इतिहास से संबंधित विषयों पर केंद्रित होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग पहले से 30 नवंबर तक चौथा राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान चलाएगा। चालू वित्त वर्ष में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में 6.33% की वृद्धि हुई है। दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त ने कल हेडो क्षेत्र का निरीक्षण कर सार्वजनिक सुविधाओं की समीक्षा की और तकनीकी कारणों के चलते जहाज MV कैंबल बे की कल की श्रीविजयपुरम से माया बंदर होते हुए कोलकाता की निर्धारित यात्रा को रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।